किताबें कब नाफिज होती हैं? जब किताबें समझ आती हैं। आगे सूरत मायदा में देखिएगा जो कुछ अल्लाह ताला इस कलाम की बरकतें हमें दिखाएंगे, तो इस रास्ते में कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी हार नहीं है आपकी। कुछ भी आपके नंबर आए कि ना आए, टेस्ट असाइनमेंट को रोग ना बनाए, एक दर्द जाग ले कि हमने अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना। और अगर आपके वीकेंड कुछ और आप क्लास में कुछ, अगर सिर्फ आपके कान सुनते हैं ना, तो बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला हमें यही बताते हैं, जो निफाक होता है वो जिहाद से सुस्ती करता भी है और दूसरों को भी पीछे करता है। मुसीबत के वक्त पे शुक्र और नेमतों के वक्त पे परेशानी। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं आयत 76 देखिए, अल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, इस पे बन लगा ले, जो लोग ईमान वाले हैं वो किताल करते हैं अल्लाह की राह में। और इसके बरक्स नंबर दो, वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीलित्तागूत, और जो लोग काफिर हैं वो तागूत की राह में किताल करते हैं। क्या तागूत है इधर? अपना नफ्स, माशरा, सोसाइटी, ये हैं दो मुजाहिद। आज खुद फैसला कीजिए आप किस में हैं। दुनिया कमाना कोई आसान है? दुनिया सीखना कोई आसान है? दुनिया के लिए कितनी मेहनतें हैं, ये भी तो मेहनत है। तुम क्या करो? अल्लाह ताला मुझे और आपको मशवरा देते हैं, फकातिल औलिया शैतान, तो तुम जंग करो शैतान के साथियों से। क्या कि वो दुनिया में रहमान के मुकाबले में बड़े बने हुए हैं, तुम उनको रहमान का पैगाम दो। और डरो नहीं, इन नकैद शैतानी का नदीफा, शैतान की चाल बड़ी कमजोर है। इतनी होप है इस आयत में कि देखो, दुनिया में अगर 80% लोग तुम्हें मुजाहिद फी सबील तागूत बने हुए दिखते हैं, बुराइयों को और नाफरमानियों को और नफ्स की आमेजशों को इतना बड़ा कर लिया, तो तुम 20% में आ जाओ। और याद रखो कि ये 20% उस 80% पे गालिब होगी। ये अल्लाह का दो टोक फैसला है। याद रखिए, अल्लाह की जात जो है ना, वो बंदे पे जुल्म नहीं करती। जो अल्लाह की राह में इसलिए लड़ता है कि दुनिया में अल्लाह का दीन कायम हो, तो अल्लाह उसको जरूर मदद देगा। तागूत को कभी भी राज नहीं। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इनकी बातों से परेशान ना हो, ये जो बातें भी करते हैं ये बातें बस ऐसे ही हैं। तुम क्या करो? अगली आयत को देखिएगा, ये फिर बात आगे तक चलेगी और उसी में इंशाल्लाह फिर एंड पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला इसमें अब अगली आयत में फरमाते हैं, आयत नंबर 77, बिल्कुल निफाक का किस्सा है। जहां जंगें आएंगी वहां निफाक का जिक्र जरूर होगा। अलम तर इलल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ्फू अय्दियकुम, तुमने देखा नहीं इन लोगों को जिनसे कहा गया कि अपने हाथ रोके रखो, बल्कि क्या करो? वह अकीम सलातवातुज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। फिर क्या हुआ? फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, फिर जब उन पर किताल का हुक्म नाफिज किया गया, यानी जब हुक्म दे दिया कि अब लड़ लो, इज़ा फरीकुम मिनहुम यख्शौनन नास, तो बास लोग उसमें से लोगों से इतना डर रहे थे, का खशयतिल्लाह, जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, औ अशद्द खशया, या इससे भी ज्यादा डर रहे थे। और फिर जुबान पे भी बात आ गई, वकालू रब्बना लिमा कतबता अलैना अल्किताल, तो वो कहने लगे, अरे रब तूने हम पर क्यों जंग फर्ज की, यानी ना तू फर्ज करता ना हम, ना इनकार करके गुनाहगार होते, हमारे ऊपर क्यों जंग को फर्ज करता है? लौला खरतना इला जलिन करीब, हमें ना अभी कुछ मोहलत दी, यानी क्यों ना हमें कुछ और मोहलत देता, थोड़ी और ऐश कर लेते, थोड़ी और मौज मस्ती करते, ये क्यों हम पे मुसल्लत कर दिया इस दीन को? तो कुल मताउ दुनिया कलील, नबी कह दीजिए कि दुनिया का साजो सामान बहुत थोड़ा है, जबकि वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत बहुत बेहतर है उसके लिए जो तकवा की रविश इख्तियार करे। और याद रखो कि वला तुज़लमून फतीला, तुम पर तो एक धागे के बराबर भी जुल्म न किया जाएगा। इन आयात में अल्लाह ताला ने सहाबे कराम में से वो लोग जो मक्की दौर में दुश्मनों का जुल्म सितम देखते और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करते, ज़हन में रखिएगा, मैं दोहरा देती हूँ चंद जुमले। मक्की दौर में जिहाद की इजाजत नहीं थी, किताल की इजाजत नहीं थी, मुसलमान थोड़े थे, अभी तैयारी भी कोई नहीं थी, ट्रेनिंग भी कोई नहीं थी, ना फतह को हैंडल कर सकते थे ना शिकस्त को। अब वो आके पूछते, जो बहादुर लोग थे, जाहिर है जिन्होंने बाद में जंगों में इतना कुछ किया तो वो उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी उनको यही कहते, कुफ हुए दिया कुम, यहाँ ये जो आयत कुफ हुए दिया कुम में हाथ बंद रखो, किसके लिए, जिहाद से हाथ रोको, तलवारें ना उठाओ। और एक तावील जो कुरान के बाद लोगों ने तर्जमों में की, आपको पता कि ये आयत कहाँ पेश करते हैं, रफुल यदैन ना करने के बारे में। नमाज में तीन जगह एक रकत में अल्लाह के नबी रफुल यदैन करते थे, नमाज शुरू करते हुए, रकत के शुरू में, फिर रुकू में जाते हुए और रुकू से उठते हुए, ये तीन जगह हैं ये करते थे। खास तौर पे एक गिरोह जो नहीं करता वो आयत पेश करते हैं कि अल्लाह कहता है कि कुफ वाईदियकुम, अपने हाथ नीचे रखो। ये सिर्फ मैंने आपके दिमाग को एक हिलाया है कि इसी कुरान को आउट ऑफ टेक्स्ट जब लोग पेश करके दलाइल दे, तो हम जैसे सीधे साधे लोग जिन्होंने ना अलिफ पढ़ी ना बे पढ़ी, वो आ जाते हैं जी मौलवी साहब ने कुरान की आयत बताई थी। तो ये आयत कहाँ नाजिल हुई है, मक्का के बारे में, कि जब वहां आकर वो चाहते थे कि कुछ करें कराएं, तो अल्लाह ताला कहता था अभी नहीं, अभी नहीं, बल्कि अभी क्या करो, कीमुस्सलात तरबिया तस्किया, अभी तुम पूरे नहीं हो, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तशद्दुद की तारीख रकम की जा रही है, सताया जा रहा है, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, इस पे लोगों का खून खौलता था। खालिद बिन वलीद तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन हजरत अली तो थे ना, बाद में कितने बहादुरी के जौहर दिखाए, एक एक सहाबी 100-100 काफिरों पे गालिब पड़ा बाद में, लेकिन तरबियत देखिए, नबी की इताअत देखिए, उलुल अम्र की इताअत, शाविर हम फिल अम्र को देखिए, ऐसा खूबसूरत ट्रेंड ग्रुप था सहाबा कराम का कि जो उस वक्त भी हूड़ मत होके अपनी मर्जियां नहीं करते थे, जब तक के किसी चीज के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और जो उनकी अथॉरिटीज होती थी उनसे वेरिफिकेशन ना ले लेते। क्यों, सवाल पैदा होता है, अब इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, ये क्यों बड़ी लंबी है, क्योंकि हमने पीछे से कितनी दफा पढ़ लिया कि मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, यहाँ एक जुमला लिखाऊंगी और वो लिख लीजिए कि जिहाद फी सबीलिल्लाह से पहले ट्रेनिंग के मराहिल आते हैं। आप तलवार उठाना चाहें और जाके कुफर को मारें, काफिर को मारें, या आप इल्म का जिहाद करते हैं, आप दीन के काम करने से पहले जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे और उस रास्ते में जुल्म और सितम या तकलीफें नहीं सहेंगे, ऐन वक्त पे आप पीछे हट जाएंगे। कच्चे लोगों के ऊपर दीन की इमारत नहीं चलती। अभी सहाबा थोड़े थे, हालांकि आपको पता है कि शुरू का ईमान कितना नया होता है, लेकिन अभी वो हालात नहीं थे कि दुश्मनों को छेड़ा जाए। क्या होता, आप इसको समझिएगा, आप देखिए कि इस्लाम नया नया है, मक्का का हर घर काफिरों का है तो बोन मुस्लिम थे, लेकिन रस्म और रिवाज और अकायद और तरीकों के लिहाज से कुफार से बिल्कुल मिल चुके थे। एक शख्स मुसलमान हुआ, फिर दूसरा होता, ऐसे ही आटे में नमक के बराबर, और अल्लाह के नबी के पास आते और कहते अल्लाह के नबी लड़े आपके जौ मुंह तोड़ दो, जो अबू जाल को तो राज मजे की सुना के आओ, बोला क्या होता बताइए, सोचिए, दो तीन जो पहले इतने नादिर और नायाब मोती थे वो जाते, तो क्या अबू जाहल का कोई दिफा ना करता, सारे घर वाले उसके साथ होते, ये सारे जो थे चोटे खा खू के आ जाते, पहली नुकसान ये होता। ठीक है, दूसरी बात देखिए कि जो अभी शुरू शुरू के अंदर चीजें होती हैं ना अपने अंदर, उसको अंदर रखना चाहिए। अल्लाह के नबी ने सहाबा की इतनी सख्त ट्रेनिंग की, मैं कह सकती हूँ कि आज के दौर में अगर आप उसको खोल के लिखे और रखे ना, तो आप कहेंगे कि बड़े सख्त किस्म के अल्लाह के नबी हुक्मरान थे। आप देखिए ना कि सहाबा आके पूछ रहे हैं कि हम जाके जरा इस काफिर को जवाब दें, तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं नहीं, तो उमर जैसा शख्स भी चुप है, उमर में कितने जौहर थे, लेकिन उमर की सारी बातें अतीउल्लाह और अती रसूल के पीछे थी, उलिल अम्र मिन्हुम। ये था वो खूबसूरत कारनामा जिस पे बाद में इस्लाम की इमारत खड़ी हुई। पीछे हमने एक मिसाल ली थी, इस्लाम एक इमारत है, ठीक है, याद कर ले उसको, सहाबा क्या बने उस इमारत में, बुनियाद। बुनियादें कच्ची रहेंगी तो ऊपर कभी फ्लोर्स नहीं डलेंगे, इजाजत ही नहीं देगी आपको गवर्नमेंट, कहेगी इसकी बुनियादें इस काबिल नहीं कि 10 से ज्यादा फ्लोर ले सके। आप दीन का काम करना चाहते हैं तो पहले आपको सेल्फ डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, करेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी और उस काम के रास्ते में कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। यकीन करें आपके इस कोर्स के या आपके इस सफर के दौरान कई मुश्किलात आपके ऊपर सिर्फ इसलिए आती होंगी, ये मेरा ईमान है, वो घर से आए, बाहर से आए, जो भी आए, सिर्फ इसलिए आती होंगी कि आप सख्त हो जाए। और अगर आप छुई मुई बने हुए और अपनी ही जात की अंदर खोए हुए और हर वक्त ये कि मैं क्या और मेरी कैसी, तो आप पूरा कोर्स भी कर जाएंगे ना, तो आप शीशे की बुनियाद बनेंगे। जिनको आगे बढ़ना होता है वो सख्त जान बनते हैं। अल्लाह के नबी ने इनको ट्रेनिंग दी, उधर से जुल्म बाहर से होता था, तसल्लियाँ इधर से मिलती थी। तो अल्लाह के नबी ने शुरू शुरू में अपनी कामयाबियों को हवा नहीं दी। हमारा ये हाल है कि अंदर कुछ नहीं होता, बाहर बहुत फूँ फाँ करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से ये भी पता चलता है कि कच्चे लोगों की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। किसी की सामने आप अगर तारीफ कर देंगे तो वो कहेगा दैट्स इट, जितना अच्छा मुझे बनना था मैं बन गया। और खामियां नहीं बताएंगे तो अगला कहेगा मैंने तो कभी कोई खामी की नहीं। हवा भर जाएगी। और आपने कभी किसी किसान को देखा होगा जब बीज डालते हैं ना, तो उसको फिर बाहर से इस तरह छुपा देते हैं, कभी बाद जब उसके इर्द गिर्द बाड़ लगा देते हैं, क्योंकि जब बीज जमीन में डाला और आपके जरा मैं देखूँ बीज कितना हो गया, दिल तो चाहता है ना देखें, आपको क्या जरा मैं थोड़ी जमीन कोटी करके देखो कि बीज में से जड़ बनी है कि नहीं, क्या होगा, कहते हैं हवा लग गई। बीजों को भी छुपाते हैं। इस तरह अगर आपके इस कुरान के दौरान आप पे कोई तकलीफें आ रही हैं, कोई मुश्किल है होंगी, मुझे नहीं लगता वैसे कि आप में से कोई मुश्किल हालात में पढ़ के ये कोर्स कर रहा है, लेकिन शायद, तो आप उसको छुपा लें ना, तो आजमाइशों का जिक्र यहाँ करें और ना अचीवमेंट्स का, ना ये करें कि मेरे पर तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। हमेशा शुरू में अपने ईमान को छुपाना चाहिए। कुरान में पढ़ेंगे सूरत मोमिन में, लगता है वो शख्स जो ईमान छुपा रहा था, एकदम जब देखा कि मूसा पे जुल्म हो रहा है तो एकदम बोल उठा। हमारे अंदर कुछ नहीं होता, खोखले, जिसको कहते हैं खाली बर्तन, बहुत बचते हैं। जब अंदर चीज होती है ना, तो वही चीज आपकी बाद में एनर्जी बनती है। जैसे आप देखिए गुब्बारा है ना, गैसी गुब्बारा, उसके अंदर गैस भरेंगे ना तो वो ऊपर उड़ेगा, और गैस को निकाल देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सहाबे कराम के, अल्लाह के नबी सल्लम के साथ मामलात में से ये आयत समझ में आती है, और हम सबको इसमें सबक सिखाया गया। हम चाहते हैं कि आज इस्लाम के लिए कुछ करें, चाहते हैं ना, तो पहले अकीम उस्सलात वातुज़ ज़कात, अपनी इसलाह करो। आज हम नमाज तो पढ़ते कोई नहीं, जिहाद कहाँ करेंगे। लिटरली मेरे गुनाहगार कानों ने लोगों से सुना है कि मगरिब की नमाज का वक्त है, कितना तंग वक्त है, और माइक पे मेरे ही जैसे लोग हैं ना जिनके हाथों में माइक होता है, वो कह रहे हैं नमाज पढ़नी है या नाते सुननी है, चलो जिसने पढ़नी है जो फटाफट पढ़ लो, जल्दी जल्दी आना, अभी बहुत नाते पढ़ी हुई है। वल्लाही वल्लाही, ये अल्लाह मुझसे झूठ ना बुलाए, कमी बेशी ना हो, लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ कि आज उतने शौक से हम नमाज नहीं पढ़ते जितने शौक से हम हम्द पढ़ते हैं, और इतने शौक से हम नमाज में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते जितने शौक से हम नबी के नाम पे नात पढ़ते हैं। पढ़िए, अल्लाह आपको मुबारक करे, लेकिन अकीमुस्सलात वातुस्सकात, नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह के आगे झुकोगे, आजजी आएगी, और आतुस्सकात दोगे ना तो माल की मोहब्बत निकलेगी, और ये दो लाजमी उनसर हैं मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के लिए, आजजी और माल से मोहब्बत ना हो। उसका माल निकले तो अल्लाह के रास्तों में, और उसके अंदर आजजी हो तो अल्लाह ताला के रास्तों में आजिज हो। इसलिए अल्लाह सुबहान ताला यहाँ इन आयतों में बताते हैं कि हाथ रोके रखने वाली हिकमत सिखा दी। आज के दौर में भी आप देखिए कि जिहाद कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इसका फैसला अमीरे मुस्लिम करेगा। आज तो बिल्कुल ही वो एक तलपट राज है, किसी को कुछ नहीं पता, हर एक कहते बस मैं ही लीडर हूँ, इसलिए हालात बड़े तंग हैं। जिहाद के दो दर्जे होते हैं, एक फ़र्ज़ ऐन और एक फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन कब है? जब मुसलमानों का अमीर कह दे सबको निकलना है, तो फिर तो एक एक का निकलना लाजिम है, जैसे गज़वे तबूक में हुआ था। और फ़र्ज़ किफ़ाया क्या है? जैसे बदर के मौके पे था, चंद लोग भी अगर निकल आते हैं ना तो बाकी ना भी निकलें तो खैर है। कब पता चलेगा कि फ़लां जिहाद फ़र्ज़ ऐन है इस वक्त के किफ़ाया है? ये उस वक्त का मुसलमानों का लीडर जो है वो डिफाइन करेगा। तो लिहाजा यहाँ ये बात कर दी कि कहते तो बहुत हैं कि ये हो गया तो ये करेंगे, लेकिन फलम कुतिब अलैहिम अल किताल, जब असल हुक्म आतर चलो करो फिर, तो इज़ा फरीकुम मिनहुम यख्शौना अन्नास, यहाँ लोगों का डर, इसको हाईलाइट कर ले, ये एक बहुत बुनियादी वजह है दीन के काम से रुकना, लोग खशियतिल्लाह, जैसे अल्लाह की खशियत होनी चाहिए वैसा लोगों का डर। आज आप देखिए कि अमूमन लोग जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं, अपना शौक कम होता है, लोगों का डर ज्यादा होता है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को खुश करना, लोगों की नजरों में जचना। आप कोई एक खुशी या गम का मौका सोच लें और आप देखें उसके बाद। इवन गम के मौके पे भी हम यही कहते हैं कि नहीं फिर लोग क्या कहेंगे, आज भी पढ़ने चली गई, इसको तो अफसोस ही नहीं हुआ अपने सास ससुर के मरने का। नहीं, लोगों का खौफ छोड़ें। आज पूरी की पूरी सोसाइटी जो आपको पीयर प्रेशर में डली हुई दिखती है, ये रातों रात फैशन के बदल जाते हैं लोगों का डर। इस तरह से आप देखिए कि अलर्ट होके हम लोगों के ऊपर चलते हैं कि हम लोगों के डर की वजह से लोगों के रब को नाराज कर देते हैं। यहाँ खुद से पूछिए, मैं अल्लाह से ज्यादा डरती हूँ कि लोगों से? मुझे अल्लाह के हुक्म की ज्यादा परवाह है या लोगों की? और नियत कीजिए, पीछे जो सबक याद किया था कि ला तअतली मखलूक इन फी मासियत अल खालिक, अल्लाह को नाराज करके मैंने मखलूक को खुश नहीं करना और मखलूक कभी खुश होगी भी नहीं आपसे। नाफरमानी करके आप लोगों की मोहब्बत ले लें, नामुमकिन। उनको शय मिल जाती है कि चलो ये कुछ हमारे हाथ में आ गए हैं। वद्दुलो तुतखिनु फयुतखिनून वाली कैफियत, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों के डर से अल्लाह का रास्ता छोड़ने वाले अपनी आखिरी सफर को, अपनी मुलाकात को क्यों नहीं सोचते? दुनिया क्या है, मताओ दुनिया कलील, थोड़ी है। वल आखिरतु खैरु लिमन इत्तका। इसका तकाबुल करेंगे, अपने नोट्स में एक लाइन लगा लें, जैसे कॉलम बनाते हैं। एक तरफ लिखिए दुनिया, एक तरफ लिखिए आखिरत। पहली बात आप देखिए कि दुनिया थोड़ी है क्वांटिटी के एतबार से आखिरत के मुकाबले में। फिर दूसरा फर्क देखिए, दुनिया थोड़ी है क्वालिटी के एतबार से। एक मौके पे बड़े खूबसूरत रेशमी कपड़े किसी जगह से आए माले गनीमत में, तो लोग देखने लगे छू छू के, ओ सो सॉफ्ट सो सॉफ्ट, कितने अच्छे कपड़े, क्योंकि उस दौर के बादशाह जो थे वो रेशम और कीमखा पहनते थे। तो अल्लाह के नबी ने जब सहाबा के चेहरे पे ये देखा ना कि इनको ये कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, तो आपने फरमाया कि वो रुमाल जो साद बिन मास को जन्नत में मिलेंगे, वल्ला ही वो इन कपड़ों से खूबसूरत होंगे। हाँ, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कहाँ से ले लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा महंगे से महंगा ब्रांड ले लें, धोने तक तो वो अच्छा है, बल्कि इस्तेमाल करने तक। इस्तेमाल के बाद आप कहेंगे देखो इतना महंगा लिया, फिर वो रह गई। फिर देखिए एक तीसरा फर्क है दुनिया और आखिरत की नेमतों में। दुनिया की चीजें मुश्किलात के बाद मिलती हैं। अमूमन देख लीजिए, जिनके पास आज पैसा है वो बचपन अपना याद करेंगे, शुरू में बहुत मेहनत की फिर ये आया। ये मार्क्स एंड स्पेंसर के बारे में मैंने सुना है, शायद आपने भी सुना हो, कि शुरू में इनकी रेड़ी थी, रेड़ी पे अपने कपड़े बेचते थे, और आज देखिए कि खाने के ऊपर भी मार्क्स एंड स्पेंसर लिखा हुआ है ना, फर्क है ना। तो मेहनत की होगी, कुछ मुश्किलात होंगी। आखरत के बारे में जो मुश्किल है ना, वो इस दुनिया में है, आखरत में जाने के बाद मुश्किल नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। फिर आप देखिए कि दुनिया की और आखरत की नेमतों में एक और तकाबुल, दुनिया एक बार मिल जाए तो फिर भी छिन सकती है। कई बादशाह से गदा बने और गदा से बादशाह हुए। जन्नत के बारे में ये लिख लीजिए कि एक दफा मिल गई तो वापस नहीं होगी, ये अल्लाह का वादा है। अच्छा, एक और फर्क देख ले, दुनिया मिल भी जाए तो बाज दफा चैन को नहीं मिलता, सच के नहीं। जो सोचा होता है ना इस चीज को पहन के खुशी होगी, वो नहीं होती। जो सोचा होता है इसको पहन के मैं इतनी अच्छी लगूंगी, सूट करेगा, वो कोई नहीं करता। और सब कुछ करे, कोई बंदा तारीफ ही ना करे आपकी, सोचिए जरा खुशी होगी? नहीं होगी। लेकिन आखरत जब मिलेगी ना, तो चैन और इत्मीनान मिलेगा। फिर इसी तरह फर्क, अल्लाह की रजा के बगैर भी दुनिया मिल जाती है, लेकिन आखरत अल्लाह की रजा के बगैर नहीं मिलेगी। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम आने वाले वक्त की तैयारी करो। दुनिया के घर, चुबारे, कोठियां, बंगले, इसकी भी फिक्र करो जरूरत के लिए, लेकिन सोचो तो सही कि तुम्हें जाने के बाद कहाँ रहना है। आयत 78, और हम अपना मौत का सफर याद करेंगे। ऐ नमा तकून युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी कहीं होगे मौत तुमको पालेगी। किताल से जी क्यों चुराता है बंदा, मौत ना आ जाए। चलें, कल तो मैदान जंग में जाते थे तो तीर और तलवारें थी ना, आज हमें कौन से तीर उठाने पड़ते हैं अल्लाह के रस्तों में। लेकिन खौफ पता क्या है, बैठ बैठ के मोटे हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा। बहुत लोगों को आपके ऊपर तरस आएगा, आपकी मूवमेंट खत्म हो रही है, आप बस स्टिल हो गई हैं, 4 घंटे आप क्लास में बैठती हैं, 2 घंटे घर आके सबक याद करती हैं, आप बेगम सारा होकर बैठी रहती हैं, इसलिए आप बीमार हैं, इसलिए आप ये छोड़ें और मूवमेंट करें। फिर उसके लिए चाहे इंसान कुछ और जाके हरकत करे, लेकिन ये बैठना बड़ा मुश्किल लगेगा। और 3 घंटे फिल्म देखने के दौरान मैंने नहीं कभी किसी को सुना कि आपका खून रुक गया, अब आप जरा सीधे हो जाए, है ना। तो मौत तो आके रहेगी। ऐ ना माँ तकून, इस ऐ ना माँ के नीचे लाइन लगाइए, सोचे मेरी मौत कहाँ आएगी। हम सुनते हैं ना दूसरों की, किसी की रास्ते में आ गई, किसी की सीढ़ी पे आ गई, कोई कुर्सी पे बैठा तो मौत आ गई। आप इसके नीचे अपने से सवाल पूछे, ऐ ना माँ मेरा कौन सा, कहाँ आएगी मौत, घर में, हॉस्पिटल में, गाड़ी में, रोड एक्सीडेंट में, जहाज में। क्या सच बताएं, हर दफा जहाज में बैठते हुए एक दफा ख्याल नहीं आता? मुझे तो हर दफा आता है, जितनी भी दफा बैठूं मैं सोचती हूँ निकल गए तो बड़ा मौज है, वरना खुदा हाफिज। ऐ न मात कूनु युद्रिकुमुल मौत, पालेगी तुमको मौत, दरक यद्रुकु इदराक, पा लेना, पीछे लगी हुई है। वलो कुंतु फी बुरुज मुशय्यदा, खा तुम बड़े मजबूत किलों के अंदर ही हो, जितनी मर्जी लाइफ सेविंग चीजें इस्तेमाल कर लो, एनर्जी ड्रिंक्स पी लो, मौत जब आएगी तो मौत ने कुछ नहीं पूछना तुमसे, मौत आएगी तुम्हें। इंश्योरेंस करा लो, दवाइयाँ ले लो, चेकअप करा लो, मौत तो आनी है, तो फिक्र की क्या बात है। आप देखिए कि इंसान, मेरा ख्याल है कि जितना मौत से डरता उतना शायद ही किसी और चीज़ से डरता हो, और जब मौत आएगी इंसान उस वक़्त बेबस होगा, तो फिर क्या करे। अब सवाल पैदा होता है कि मौत का डर, नहीं डरना है, नहीं डरना, क्या करना है। तो लिख लीजिए कि मौत से डरने की बजाय मौत की तैयारी कर लीजिए। जब किसी काम को तैयारी से कर लिया जाता है तो काम आसान हो जाता है ना, बिल्कुल यही बात है। और ये जो बुरूज है ना, बुर्ज से जाहरा, जाहिर होना, बुलंदी, बारिजा बादबानी कश्ती को कहते हैं, जिसके ऊपर एक ऐसे लगा होता है झंडा सा। और मुशय्यदा शीद से पके हुए चूनागढ़, यानी बहुत स्ट्रांग किस्म की बिल्डिंग, पक्के घर बना लो, पर ये यकीन रखो कि ये मौत से बचा नहीं सकेंगे। ये सब कुछ तो होगा और होके रहेगा, तुम इसके लिए बस तैयारी करो। और रह गया अल्लाह के रास्ता, अल्लाह का दीन, जिसके दिफा के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा था, तो उसका हाल क्या। अब आगे देखिए, आयतें फिर जिहादी की हैं। वइन तुसिबहुम हसनतन यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, और अगर इन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से। ये कौन कह रहा है? मुनाफिक। जरा सुनते जाइए कि फतह मिल जाए, खैर मिल जाए, कोई अच्छी चीज हो तो अल्लाह से। लेकिन पीछे आपको बताया था कि मुनाफिक का असल ग्रज किससे है? लीडर से, उस्ताद से, रसूल से। इसलिए जब शिकस्त होती तो उस वक्त क्या कहते कि ये तो बस आपकी तरफ से है, और जब कोई फतह मिलती, जब कोई उनको खैर मिलती जंग में, तो कहते ये अल्लाह की तरफ से, और जब कोई नुकसान मिलता तो क्या कहते। देखिएगा अगला हिस्सा, वहीं तुसिबहुम सैय्यतुन, और अगर उनको कोई तकलीफ पहुंच जाए, शिकस्त हो जाए, यकूलु हाज़िही मिन इंदिक, तो कहते ये तो आपकी तरफ से है। पहले तो आप इस जुमले की कड़वाहट को महसूस करें, इतना बदगुमान है अपने लीडर से मुनाफिक कि जो बुरा हो रहा है वो बस इनकी वजह से हो रहा है, और जो अच्छा हो रहा है वो जी अल्लाह का फजल है। कहा नहीं, कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, सब कुछ कह दो कि अल्लाह की तरफ से है। फमाली हाउलाइल कौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात इनकी समझ में आती कोई नहीं है। क्या बात समझ नहीं आती? अगली आयत 79 में, मा साबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, ए इंसान तुझे जो भलाई हासिल होती है वो अल्लाह की इनायत से हासिल होती है, जो भी भलाई, सोचे जरा। वो मा साबक मिन सैयतिन फमिन नफ्सिक, और जो भी तुझे बुराइयां मिलती हैं वो तो तेरे अपने कसब और अमल की वजह से है। रबी कहाँ से आ गया, रसूल कहाँ से आ गया बीच में? जो तकलीफ पहुंचती है वो तुम्हारी तरफ से है, और जो खैर है वो अल्लाह की तरफ से है, बाकी रह गए रसूल। वरसलना कलिन्नासी रसूला, और ए रसूल आपको तो हमने लोगों के लिए सिर्फ एक पैगंबर बनाकर भेजा। वकफा बिल्लाही शहीदा, और अल्लाह इनको खूब देख रहा है, यानी नबी के बारे में बुरा गुमान किया, अल्लाह ने देखे कितनी आयतें उतार दी कि मेरे नबी का काम सिर्फ बात पहुंचा देना, और उन्होंने पहुंचा दी, लोग नहीं मानते उनकी मर्जी, لہٰذا کیا کرو، آیت 80، مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَنْ تَوَلَّ، اور جس نے منہ پھیرا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے پھر آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. کیا بات سمجھ آئی کہ منافق کیا سوچتا ہے؟ کہ جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، شر جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی پلاننگز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی انسٹرکشنز ٹھیک نہیں ہیں، آپ بات ٹھیک طرح سے نہیں کرتے، آپ ایکسپلین نہیں کرتے، کہتے جو ہیں پھر کرواتے کچھ اور ہیں، یعنی پرابلم اس کو رسول کے ساتھ ہے. اور یہ جملہ آپ دیکھیں سورت بقرہ سے ہم بولتے آ رہے ہیں کہ منافق کا اصل مسئلہ رسول کی ذات ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم لیڈرز کو برا بھلا کہہ کے سوچتے ہیں کہ ہم بچ گئے اور ہمیں اب کوئی نہ پکڑے، حالات ہی نہیں اچھے، حکمران ہی نہیں اچھے، فلاں ہی اچھا، ہم کیا کریں، ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، دس اینڈ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کرنا چاہتے ہو تو اطیعوا الرسول کر لو، رسول کی اطاعت تمہیں دنیا میں بھی خیر دے گی اور آخرت میں بھی خیر ملے گی. آپ دیکھیے کہ اگر آج ہم امت مسلمہ، چلیے ربیع الاول چل رہا ہے نا، اس ربیع الاول کے ناطے سے یہ نیت کر لیں اگلے سال تک پوری دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کروں گی. یقین کریں گے اگلے ربیع الاول سے پہلے پہلے دنیا کے آدھے ملکوں سے دشمنوں کا قبضہ جا چکا ہوگا، آدھی کیا اللہ کو پتہ کتنی، لیکن جتنی اطاعت بڑھتی جائے گی اتنی ہماری زندگیوں سے مشکلات ختم ہوتی جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کتنا بڑا مقام ہے نبی کا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. دین کا یہ رخ اگر آج امت مسلمہ میں عام ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی خیر آ جائے گی. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں رسول اور اللہ کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ لیڈرز کی بات ماننے والا بھی بنائے. لیڈر چنے تو اچھے چنے، اور جب کسی کو چنے تو پھر اس کی بات کو بھی مانیں، اور باقی نبی سے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں، آپ ان کی فکر نہ کریں. ظاہر اللہ کے نبی کو دکھ تو ہوتا ہی تھا جب لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے. آج میں اور آپ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے نا منافق، لیکن آپ دیکھیے وہ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے. منافق کون تھے؟ انہی میں سے تھے نا جو کلمہ پڑھتے تھے. تو یہ جیسے جیسے کوئی کہتے فلاں کا بچہ چور بن گیا، آپ تو ایک کہانی کے طور پہ اس کا ذکر کریں گے، لیکن ماں کیسے ذکر کرے گی؟ آنسو سے کرے گی. تو اللہ کے نبی کو تو سب سے محبت تھی. بات کرنے کی یہ ہے کہ تم اپنے عمل کو ٹھیک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ لے گا. اب یہاں تک بات جو ہے نا وہ ایک اینگل سے پوری ہو چکی ہے.